जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
साक्षी प्रभु जी का एक बार महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी बहुत सीनियर भक्त हैं और प्रभु जी बहुत सारी किताब लिख रहे हैं अभी और लिखे भी हैं बहुत सारी किताब और बहुत सारे प्रभु जी में गुण है अभी बता नहीं सकते। सॉरी प्रभु जी बीच में मिस्टर हरे
हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद है, इन सबका मुझे आज आमंत्रित किया और विशेष दिन है आज। श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव है। तो आज हम थोड़े समय के लिए रामानुजाचार्य के बारे में सुनेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ऐसे आचार्य की कृपा प्राप्त करना। रोज हम सुबह उठते हैं और मंगल आरती आते हैं तो रोज सुबह उच्चारण करते हैं यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश अप्रसादा, उसी को भी प्रसादा बोलते हैं भगवान। वहां क्या है, यश अप्रसादा न गति हुतोपि। तो वहां ये जो गीत है श्रील विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर ने लिखा है, उसके उस अंतिम पद में वो कहते हैं कि ऐसे गुरु या महान वैष्णव की कृपा से भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, और यदि उनकी कृपा हमारे जीवन में नहीं है तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए आदि पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक उपदेश देते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, हाँ वो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त करनी है तो हमें किसी भक्त का आश्रय लेना होगा, और ऐसे महान भक्तों की कृपा की याचना करनी पड़ेगी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। यदि किसी व्यक्ति ने भगवान के महान भक्त की शरण ग्रहण की है तो कृष्ण उसे कभी भी त्यागते नहीं है। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भगवत भक्ति में। और आज ऐसे ही एक महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव है, क्योंकि भगवान जिस प्रकार से कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हाँ जैसे मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी साधारण उनका जन्म और साधारण उनके कर्म नहीं है। लेकिन हम अपने इस भौतिक आंखों से भगवान के भक्तों को भी कैसे समझते हैं, साधारण समझते हैं अपने भौतिक बुद्धि के कारण। तो भगवान के भक्त भी भगवान के समान है, हाँ जैसे सूर्य है वो उदित होता है और अस्त हो जाता है, ऐसे नहीं कि सूर्य ने जन्म लिया सुबह और सूर्य अभी मर गया शाम को, नहीं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी इस संसार में सूर्य के समान प्रकट होते हैं, इसलिए उसको आविर्भाव कहा गया है। और इस संसार से हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं तो उसको तिरोभाव कहा गया है या तिरोहित होना। लेकिन ऐसे भक्त हमेशा भगवान के संग में क्या है, विद्यमान है उनकी लीलाओं में। इसी कारण से भगवान के भक्तों का जीवन, भगवान के भक्तों का चरित्र को सुनना हमारे लिए परम आवश्यक है। और भगवान के जो कार्यकलाप है वो केवल अकेले अकेले नहीं है, भगवान की लीलाएं इसलिए हमें मधुर लगती है क्योंकि उनके संग में कौन है, भक्त है। उनके भक्त उनके साथ मधुरतम प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी हमें मधुर लगती हैं। इसी कारण से कहा गया है वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, कि भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो बहुत पवित्र करने वाला है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें, है ना। जब भी कोई व्यक्ति प्रभुपाद के बारे में उनकी कथाएं सुनाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उसी प्रकार से ऐसे भक्तों का चरित्र को सुनना वो बहुत शुद्धिदायक है और बहुत प्रेरणा देने वाला है। और कोई व्यक्ति भक्तों की गाथा को, भक्तों के चरित्र को सुनता है तो एक गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, वो कौन सा है, दृढ़ता। कौन सा गुण, दृढ़ता। भक्ति करने के लिए दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। यह दृढ़ता गुण किसमें सबसे अधिक था, ध्रुव महाराज में, इसलिए उनका नाम क्या था, ध्रुव। ध्रुव का मतलब ये जो पक्का दृढ़ है, डिटर्मिनेशन। बच्चा 5 साल का था, छोटा सा बालक, लेकिन भगवत प्राप्ति कितने साल में की, 6 महीने में। 5 साल की आयु में और 6 महीने में साधना कर ले, भगवान को सीधा प्रकट होना होगा पड़ा उनके सामने। और हमारे जीवन में हम देखें तो पता नहीं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहुत जन्म जन्म हम बिता देंगे तो भी इस हृदय का कोई अशुद्धिकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है। आज हम आते मॉर्निंग प्रोग्राम में तो कल गायब रहते हैं, आज थोड़ा बहुत जप कर लिया कल ढीले हो गए। हाँ, तो दृढ़ता नहीं है, बिना दृढ़ता के कैसे भगवान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए ये दृढ़ता गुण हमारे अंदर लाना है तो भक्तों के चरित्र को सुनना होगा। उनके चरित्र को जब सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, अरे प्रभुपाद तो 70 साल के थे, उन्होंने ये चीजें कर दी 70 साल की आयु में। आप देखो उस समय प्रभुपाद कहाँ रहते थे, जहां रह रहे हो यहाँ आके रहते थे, कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, छिपीवाड़ा तो मैं नाम सुनता था, पढ़ता था, आज पहली बार आया हूँ यहाँ। हाँ, कि यहाँ प्रभुपाद आके रहते थे, अपनी किताबों का प्रिंट करते थे, लिखते थे, एडिटिंग करते थे, हाँ छापखाने में जाते थे, कितना सारा यहाँ है प्रभुपाद चेतना। तो जब हम ऐसे बड़े बड़े महान महान भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो हमारा हृदय एक तो शुद्ध होने लगता है, दूसरा हमें भक्त बनने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, क्योंकि हमें भक्तिमय जीवन में सदैव एक चीज हमेशा चाहिए, क्या चाहिए, प्रेरणा चाहिए, उत्साह चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर हमें भक्त बनने की इच्छा भी नहीं होगी, हम प्रेरित नहीं रहेंगे, उत्साहित नहीं रहेंगे, बहुत ढीले ढीले बने रहेंगे भगवत भजन में। तो इसलिए ऐसे भक्तों का जब चरित्र सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश आता है भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ, तो ऐसे ये श्रीपाद रामानुजाचार्य है एक आचार्य, चार संप्रदाय है ना, एक है श्री संप्रदाय, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय और एक है कुमार संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदायों के चार महान आचार्य हुए हैं। ब्रह्म संप्रदाय, जो हम जिस संप्रदाय में आते हैं, हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये हमारे संप्रदाय का नाम है। इसके प्रमुख आचार्य ब्रह्मा थे, उसके बाद आगे चलकर महान आचार्य हुए मध्वाचार्य, हाँ जो प्रमुख आचार्य बने इस संप्रदाय के। दूसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिनकी शुरुआत किसने की थी, शिवजी ने। हाँ, इसलिए शिवजी भगवान के महान भक्त हैं, वो भगवान नहीं है। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है वैष्णवानाम यथा शंभु, कि जितने भी भगवान कृष्ण के विष्णु के भक्त हैं उनमें सबसे बड़ा भक्त कोई है तो वो महादेव शंभु है। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, हाँ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। महादेव का एक मुख नहीं है, हमें तो एक मुख दिखाई देता है जब उनकी मूर्ति देखते हैं। ओरिजिनली कितने मुख है, 5। इतने मुख क्यों, इतने मुख क्योंकि जब एक बार वो उनका विवाह से पूर्व महादेव जब भगवान के सौंदर्य को देखा कृष्ण को, तो उन्होंने सोचा अरे ये 2 आंखें तो कम है, कृष्ण तो इतने सुंदर है, उनकी सुंदरता को पीना है तो 2 आंखें काफी नहीं है। जैसे कोई फिस्ट होती है, गुलाब जामुन, स्वीट राइस, बड़ा अच्छा खीर बनती है सेवैया की, तो हमें लगता है 1 ग्लास काफी नहीं है, मुझे 3-4 ग्लास चाहिए। हाँ, तो वैसे ही जब कृष्ण के सौंदर्य को उन्होंने देखा, शिवजी को लगा ये 2 आंखें काफी नहीं है, और अपनी जीवा से वो नाम उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको लगा ये एक जीवा भी काफी नहीं है, तो भगवान को याचना की, तो तुरंत उनके कितने मुख हो गए, और 4 आ गए, 5 हो गए, अभी उन कितने आंखें हो गए उनके पास, 10 आंखों से किसको देख रहे हैं, कृष्ण को, इतने सुंदर है कृष्ण, और 5 मुखों से 5 जीवाओं से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। हमारी बिल्कुल विपरीत दशा है, एक जीव है वो भी सुबह जप करती नहीं है, वो भी इतनी परेशान कर देती है, सुबह सुबह उठते ही उससे हरि नाम निकलता नहीं है। तो ऐसे महादेव इतने बड़े भक्त हैं कृष्ण के, हाँ जिन्होंने ये संप्रदाय शुरू किया रुद्र संप्रदाय, और आगे चलकर उसके आचार्य बने महान एक वैष्णव विष्णु स्वामी, और एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए हैं ना, चतुर कुमार। हाँ, तो ऐसे 4 कुमारों से संप्रदाय शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने भगवत ज्ञान प्राप्त किया था भगवान अनंत देव से, और फिर आगे चलकर उस संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं निंबार्काचार्य, फिर ये जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, श्री मीन्स कौन, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी का नाम है श्री देवी, है ना। आप जाओगे दक्षिण भारत में तो लक्ष्मी को श्री देवी कह के पुकारते हैं, उनके कई सारे नाम हैं। तो ऐसे लक्ष्मी देवी ये जो उपदेश प्रदान करती है संप्रदाय के माध्यम से, आगे चलकर इसमें बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, और उनमें कौन हुए हैं, प्रमुख आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो इस संप्रदाय के केवल रामानुजाचार्य ही आचार्य नहीं है, उनसे पहले एक महान भक्त हुए थे जिनका नाम था यमुनाचार्य, उनसे पहले एक भक्त हुए थे जिनका नाम था नाथ मुनि, उनसे पहले 12 डिवोटीज हुए थे जिनको कहते अलवर। क्या कहते हैं, अलवर। यदि रामानुजाचार्य को समझना है तो आपको पहले इन भक्तों को समझना होगा, तब रामानुजाचार्य समझ में आ सकते हैं। श्री संप्रदाय से हमारे संप्रदाय को समझना है तो आपको 6 गोस्वामियों के बारे में जानना होगा। 6 गोस्वामियों के बारे में पता नहीं है तो इस संप्रदाय को आप टच भी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से उस संप्रदाय में ये कलयुग शुरू हुआ था, 100 साल हुए थे कलयुग शुरू होकर, तब 12 भक्तों ने जन्म लिया दक्षिण भारत में, तमिलनाडु आंध्र वगैरह में, और 12 जिनको 12 अलवर कहते हैं। अलवर शब्द का अर्थ है जो कृष्ण प्रेम में डूबा रहता है उसको क्या कहते हैं, अलवर। हम यहाँ क्या यूज करते, गोस्वामी लगाते हैं ना हर भक्त के लिए, गोस्वामी गोस्वामी गोस्वामी, वैसे वह अलवर कहते हैं। तो ऐसे 12 भक्त वे थे, 12 अलवर, उसमें से 11 पुरुष थे और एक स्त्री थी अंडाल जिनका नाम था। तो ऐसे ये जो महान भक्त वे थे, और उनके बाद नाथ मुनि एक आचार्य हुए, उनके बाद एक यमुनाचार्य हुए। तो विशेषता क्या थी उस संप्रदाय की, कि उनके पहले जो गुरुगण थे रामानुजाचार्य से पहले यमुनाचार्य और नाथ मुनि ने कहा, पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारे संप्रदाय में एक ऐसा आचार्य होगा उसका उसको जाना जाएगा उद्धारक आचार्य के नाम से, मतलब वो सारे जगत का उद्धार करने का सामर्थ्य रखेगा, इतना पावरफुल। इसलिए आज भी लोग सब जानते हैं कि जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें सबसे पावरफुल आचार्य कोई हुए हैं तो वो कौन थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य। क्योंकि रामानुजाचार्य साक्षात कौन थे, उनके नाम से पता चलता है, राम अनुज। अनुज शब्द का क्या अर्थ होता है, छोटा। जो राम से छोटे थे, कौन थे छोटे, लक्ष्मण थे। तो ये लक्ष्मण ही स्वयं अवतरित होते हैं किस रूप में, रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। और रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित होकर विशेष विशेष प्रचार कार्य करते हैं, और रामानुजाचार्य भगवान की एक विशेष शक्ति के अवतार है। जैसे भगवान की लक्ष्मण हमेशा भगवान राम की सेवा में लगे कि नहीं, लक्ष्मण की खासियत क्या है, 14 साल के वनवास में कभी बैठे नहीं है या सोए नहीं है, सोए नहीं खाए नहीं और अपनी पल के झपका ही नहीं है, ऐसी सेवा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। हम तो हर समय लेटने का सोचते हैं, हर समय पल के बंद रखने का सोचते हैं, इसलिए लक्ष्मण का इतना बड़ा स्थान है भगवान राम की सेवा में। तो भगवान कृष्ण या भगवान की सेवा, ये जो अनंत शेष है, लक्ष्मण है बलराम है, वो सारे एक ही हैं, ये करते हैं दो प्रकार से। कैसे करते हैं दो प्रकार से, एक उनके लिए वो बेड बनते हैं और दूसरा उनके लिए छतरी बनते हैं। जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो अनंत शेष आ गए कि नहीं, उनके ऊपर छाता बन के बारिश वसुदेव ले जा रहे थे। और भगवान को सोना है तो किस पर सोते भगवान, बेड उनका कैसा है, आपको कहा जाए आ जाइए हमारे घर में, सांप का बेड बनाया हुआ है नाम सुनते भागेंगे। भगवान सर्प के शैया में लेटे रहते हैं, तो ये अनंत शेष इस प्रकार से सेवा करते हैं। और उन्हीं की एक शक्ति है, दो शक्तियां हैं, एक शक्ति होती है आधार शक्ति और दूसरी होती है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति, मतलब भगवान को एक सेवा सबसे अधिक प्रिय है। भगवान जब उठते हैं सुबह सुबह तब वो भगवान को वो बहुत अच्छा लगता है वो सेवा, और जब भगवान सोने जाते हैं तो वो एक सेवा अच्छी लगती है। कौन सी सेवा है वो? भगवान गुणगान सुनना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण जब सोते थे वृंदावन में तो माता यशोदा उनको क्या करते थे? कृष्ण कथा सुनाते थे, लोरी सुनाते थे। हाँ, वैसे ही दक्षिण भारत आप जाओगे तो सारे मंदिरों में जब भगवान रात को शयन करते हैं तो उनके लिए विशेष विशेष गीत गाए जाते हैं, तो भगवान उनको सुन के उनको निद्रा आती है। जगन्नाथपुरी में भी आप जाते हो तो वहां गीत गोविंद सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी, और वो सुन के तो उसके बाद वो निद्रा आती है उनको। और जब भगवान उठते हैं तो भी उनको गीत सुनाना पड़ता है तब वो उठते हैं। तो वो जो सेवा है, वो जो शक्ति है, उसको कहते हैं कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। जब भगवान की ये शक्ति एक व्यक्ति का रूप धारण करती है तो वो कौन है? श्रीपाद रामानुजाचार्य है। इसलिए रामानुजाचार्य पावरफुल आचार्य है भगवान का क्या करने के लिए? गुणगान करने के लिए। तो हमारे संप्रदाय में यदि देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा किसी और संप्रदाय से ली थी तो वो ली थी रामानुजाचार्य के संप्रदाय से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है ये मध्वाचार्य के अनुगत है, फिर भी उन्होंने ये चारों संप्रदाय से दो दो शिक्षा ली, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा को क्या किया? सबके सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो रामानुजाचार्य थे उनसे चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षा ली और वो अपने भक्तों के जीवन में क्या कर दे? डाल दे। दो शिक्षाएं कौन सी थी? एक थी अनन्य भक्ति। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब है कि भगवान की सेवा अब बिना किसी हेतु के करना, न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वा जगदीश कामयन। हे भगवान कृष्ण, मुझे आपकी सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहते जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ऐसे व्यक्ति की देखभाल मैं स्वयं करता हूं, उसकी जो आवश्यकता है भगवान कहते अपने माथे में समान उसके घर पहुंचाता हूं। ये किसके वचन है? कृष्ण के हैं। हाँ, योग क्षेम वहां में हम, वहां में मतलब वहन करता हूं, मैं लेके जाता हूं। तो ये अनन्य भाव का जो भजन की भावना है ये रामानुजाचार्य से चैतन्य महाप्रभु ने ली। अब दूसरी एक चीज चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य से ली, कौन सी थी? भक्त जन सेवा। किसकी सेवा? समाज सेवा नहीं, किसकी सेवा? भक्तों की सेवा। सारा संसार समाज सेवा कर रहा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा किसकी है? भक्तों की सेवा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, कि जब तक वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तो कैसे इस संसार बंधन से हम मुक्त होंगे? इस संसार बंधन से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत आवश्यक ये दो शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य के जीवन से ली और अपने संप्रदाय में डाले। इसलिए प्रभुपाद ने भी ये दो चीजों पर बहुत जोर दिया है। प्रभुपाद ने शुरुआत से सिखाया है कि भगवान की सेवा क्या करनी है? हमें अनन्य भावना से करनी चाहिए, हाँ, बिना किसी हेतु के। और दूसरा, भक्तों की सेवा करने में सदैव अनुराग बढ़ाना चाहिए। और वास्तव में रामानुजाचार्य की कृपा को प्राप्त करने का मतलब है उनकी शिक्षा का क्या करना? पालन करना। जैसे गुरु की कृपा हम चाहते हैं तो तभी संभव है। गुरु की कृपा हम सोचते हैं कि गुरु के आगे पीछे घूमते रहने से वो आएंगे और तभी उनके आगे पीछे घूमो फोटो खिंचवाओ कृपा मिलेगी, नहीं। गुरु नहीं है, गुरु हमें देख नहीं रहे हैं, तब आप कैसे सेवा करते हो गुरु की? वो सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और तभी वास्तव में भगवान के चरणों में अनुराग हो सकता है। इसलिए कहते ना शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल। तो भक्तों के चरणों की रेन धूलि लेने का मतलब है हाँ ऐसे नहीं कि भक्तों के चरणों की धूली लेके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन असली धूली लेने का मतलब क्या है, उनके मुखारविंद से निकले हुए वचनों को सुनना और उसके आधार पर क्या करना, सेवा करना, ये है असली किसी वैष्णव की गुरु की धूली को अपने सर माथे में लगाना, स्वीकार करना। हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये दो सेवाओं को लेते हैं और अपने भक्तों के जीवन में डालते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य के जीवन में हम देखेंगे कि ये दो चीजें उनके जीवन में बहुत भरी पड़ी थी। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, जो चेन्नई सिटी है, चेन्नई के पास एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है श्री पेरुम्बुदूर। सुना है आपने, राजीव गांधी का जहां हत्या हुई थी, हाँ श्री पेरुम्बुदूर वो जो गांव है उसका पहले नाम था भूतपुरी। अमरीश महाराज वहां गए थे, बहुत सारे लीलाज है। तो ऐसे श्री पेरुम्बुदूर में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था और उनके माता का नाम था दीप्तिमती। हाँ ये दो बहनें थी, कांतिमती और दीप्तिमती। और उनके जो पिता थे उनको कहा जाता था शरद क्रतु, ऐसे उनका नाम था रामानुजाचार्य के पिता का। तो इनका जब विवाह हुआ था तो उनको कोई संतान नहीं थे, वो श्री पेरुम्बुदूर से मद्रास चेन्नई तक चलते चलते जाते थे और चल के जाकर वहां एक मंदिर है, आज भी है, बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर है मद्रास में, जिसका नाम है पार्थसारथी। क्या नाम है, ऐसे कृष्ण है जिनकी मूछे हैं, विग्रह है बड़े बड़े, इतने बड़े कृष्ण है, हाँ मैं कई बार गया हूँ, तो उनकी बड़ी बड़ी मूछे हैं। तो ये है, वहां जाते हैं और भगवान को रोज एक साल तक जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा आप हमें पुत्र दे दो, वो पुत्र कैसे होना चाहिए, आपके जैसे होना चाहिए, जो आपकी सेवा कर सके। हाँ तो वो उनको पुत्र प्राप्त होता है रामानुजाचार्य के रूप में और वो उनकी सेवा करने लगते हैं। तो रामानुजाचार्य के पिता का नाम केशवाचार्य था, केशवाचार्य, और उनकी माता का नाम दीप्तिमती था। तो इनको ये पुत्र प्राप्त हुए हैं। तो रामानुजाचार्य की जो माँ है उनके एक भाई थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। तो ऐसे जो शैलपूर्ण है वो सन्यासी थे। जब उन्होंने देखा कि अरे मेरी बहन को पुत्र हुआ है तो वो तीव्रता से आ जाते हैं और उनके घर में और वो पुत्र को देखकर उसका नामकरण करते हैं। क्या नाम रखते हैं उसका, रामानुजाचार्य, रामानुज ये नाम रखते हैं। तो ये रामानुजाचार्य बचपन से ही बहुत पावरफुल और शक्ति संपन्न वैष्णव थे जो श्रुति दर्पित है। तो आगे चलकर रामानुजाचार्य का जब विवाह हो जाता है तो एक ब्राह्मण की कन्या थी जिनका नाम था रक्षा कंबल, उनके साथ विवाह होता है। और विवाह होकर वो देखते हैं कि उनकी पत्नी इतनी भक्त नहीं है। रामानुजाचार्य तो सॉलिड डिवोटी थे कृष्ण के, रोज बहुत सारी सेवा करते थे, हरि नाम का उच्चारण करते थे और वैष्णवों की सेवा करते थे। और ऐसे रामानुजाचार्य का जब विवाह हुआ तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रक्षा कंबल उसका नाम था, वो बहुत बाधाएं उत्पन्न करती रहती थी, भक्ति करने में कोई सहायता नहीं करती थी। तो एक बार रामानुजाचार्य ने दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए। श्रीरंगम से एक महान डिवोटी आए थे कांचीपुरम में, तो रामानुजाचार्य निवास करते थे कांचीपुरम में। और कांचीपुरम में जब रामानुजाचार्य रहने लगे तो वहां एक वैष्णव जिनसे उन्होंने दीक्षा ली जिनका नाम था महापूर्ण। तो जब उनसे दीक्षा लेने का समय आया तो रामानुजाचार्य जा रहे थे श्रीरंगम की ओर पैदल कई किलोमीटर दूर। तो वहां से उनको दीक्षा देने के लिए ये महापूर्ण अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे उनके गुरु। और उनके गुरु ने कहा चलो मैं आपको कांचीपुरम शहर में जाके भगवान के मंदिर के सामने जाकर दीक्षा देता हूँ। रामानुजाचार्य कहते नहीं नहीं अभी मुझे दीक्षा दे दो यहाँ पेड़ के नीचे। हाँ कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। यदि दीक्षा हम ग्रहण नहीं करते तो हमारा जीवन क्या है, एक पशु के समान है और भगवान हमसे कोई सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप मुझे अभी के अभी दीक्षा दे दो तो वहीं जंगल के बीच में रास्ते में ही थोड़ा सा यज्ञ करते हैं और वहां रामानुजाचार्य को दीक्षा देते हैं और वो वापस आते हैं। तो अपने गुरु के साथ वो अपने घर आए कांचीपुरम, जो शहर है कांचीपुरम में रामानुजाचार्य अपने पत्नी के साथ रहते थे, बड़ा सा घर था। तो एक घर के एक रूम में अपने गुरु को रखते हैं, महापूर्ण जन का नाम था और उनकी पत्नी, और रामानुजाचार्य एक रूम में रहते हैं अपने पत्नी के साथ। तो रामानुजाचार्य दिन में वहां के जो विग्रह है, जैसे यहाँ राधा वल्लभ है तो वहां एक विग्रह है, बहुत बड़ा मंदिर है जिनका नाम था वरदराज, वरदराज विग्रह है, वरदराज कृष्ण है जो वर देने के लिए सक्षम है। तो जब उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं, तो ये जो घर में ये दोनों स्त्रियां थे, एक तो रामानुजाचार्य की पत्नी और दूसरी कौन थी, उनके गुरु महापूर्ण की पत्नी, ये दोनों पानी लाने एक ही कुएं में जाते हैं। अभी रामानुजाचार्य की पत्नी बड़ी क्रोध स्वभाव की थी, उसको सहन नहीं हो रहा था कि मेरे घर में लाके रखा है उसको, ये मेरा पति अभी पागल हो गया है, अपने गुरु को भी अपने घर में रख दिया, पत्नी को भी रख दिया, उनका खान पान सब कुछ संभालना पड़ रहा है। तो उसको ऐसे लग रहा था कि कब ये झंझट हमारे घर से निकल के चला जाए। हाँ, तो ये जब पानी के लिए गए दोनों, तो वो जो उनके गुरु थे रामानुजाचार्य के, महापूर्ण की पत्नी जब पानी भर रही थी कुएं से अपने बर्तन में डाल रही थी, तो पानी की कुछ बूंदे उड़कर रामानुजाचार्य की पत्नी के जल में जाके गिरती है। तो इतनी क्रोधित हो जाती कि नीच, हाँ, उच्च कुल के ब्राह्मण है तो नीचे कुल के ब्राह्मण हो, बहुत कुछ बोलने लगती है, कहते कि हमारे टुकड़ों में यहाँ पल रहे हो, ऐसी बहुत बहुत सारी गालियां वगैरह देती है, बोलती है। तो वो चुप थी और वो अपने घर जाती है वहां, और रामानुजाचार्य के जो गुरु है महापूर्ण को बोलकर, उनके गुरु जी सोचते कि चलो अभी ये भगवान की योजना है, भगवान चाहते कि हम जल्दी यहाँ से चले जाए श्रीरंगम वापस, तो वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। रामानुजाचार्य घर में आए नहीं थे, तो जब रामानुजाचार्य आए वापस, पूछा अरे घर तो खाली है, गुरुजी भी नहीं है, उनकी पत्नी भी नहीं है। तो रामानुजाचार्य दुखी हो जाते हैं, उनको पता चलता है सबकी जड़ कौन है, मेरी पत्नी जो भक्ति नहीं करती और उसको कोई भक्त सहन नहीं होता है। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि क्या मुझे ऐसे स्त्री के साथ जीवन बिताने से क्या लाभ, जिससे मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता, वैष्णव की सेवा नहीं कर सकता। तो एक दिन सुबह सुबह उठकर रामानुजाचार्य अपने घर से बाहर निकले, जब वो चल के जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, और वो ब्राह्मण देखा कि बड़ा पतला सा ब्राह्मण है, ठीक से कपड़े नहीं उसके शरीर पर। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप इतने पतले कैसे हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो। कहता है कहां खान पान मुझे, हाँ अभी अभी तुम्हारे घर से आया हूं, जब तुम्हारे घर में गया था दरवाजे पर तुम्हारी पत्नी ने गालियां देकर भगा दिया है मुझे। हाँ, तो जब रामानुजाचार्य ने सुना कि ऐसे भी मेरी पत्नी करती है, ब्राह्मणों को भी भगाती है, थोड़ा भी कुछ उनको नहीं देती दान भिक्षा आदि, तो रामानुजाचार्य को बहुत दया आई। उन्होंने कहा अभी मैं तुम्हें मेरे घर भेजता हूँ, देखो वो कैसे करती है स्वागत तुम्हारा। तो रामानुजाचार्य अपना पेपर निकालते हैं, पेन निकालते हैं, ताल पत्र हुआ करता था उस समय, और फिर एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं छोटा सा, और वो ब्राह्मण के हाथ में देते, कहते कि ब्राह्मण इसे ले लो और मेरे पत्नी के पास जाओ, मेरे घर जाओ और उनको दे दो और उनको बोलो मैं तुम्हारे मायके से आया हूं और तुम्हारे पिता ने भेजा है। तो जब वो चला गया ब्राह्मण और गया और उस स्त्री को कहा, रामानुजाचार्य की पत्नी रक्षा कंबल को कहा कि ये मैं तो आपके मायके से आया हूं, पत्र लेकर तुम्हारे पिता ने भेजा है। तो बस अभी तो पूछा भी नहीं, उसके लिए स्नान करने के लिए गर्म पानी चूल्हे में रख दिया, बहुत सारे भोजन बनाने की तैयारी शुरू हो गई, वो इतनी आनंदित हो गई, कहां से आया ये व्यक्ति, मेरे मायके से आया है, एक्टिव हो गई। और फिर उसके लिए नहाने के लिए पानी प्रसाद आदि सब खिलाया पिलाया, नए वस्त्र भी दे दिए, और उसको तो पत्र पढ़ना नहीं आ रहा था। तो तब तक रामानुजाचार्य आ गए, उसने कहा देखिए मेरे घर से पत्र आया है, मेरे पिता ने भेजा है, ये लिखा किसने था, रामानुजाचार्य ने लिखा था। और खुद पढ़ने लगे उसके सामने, पत्नी के सामने, कहा देखो तुम्हारे पिता का खत है और वहां तुम्हारी जो दूसरी छोटी बहन है उसका विवाह होने जा रहा है और घर में बहुत सारे काम आदि हैं, तुम्हारे माँ ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है, तुरंत जल्दी निकल जाओ। तो अभी वो रहा नहीं गया कि अरे घर में इतना बड़ा विवाह समारंभ हो रहा है, मुझे जाना होगा। तो वो तुरंत कहते ब्राह्मण वहां से आया है, ये ब्राह्मण आपको ले जाएगा। तो वो उस ब्राह्मण के साथ चली जाती है और फिर रामानुजाचार्य सोचते हैं कि अभी बस। तब रामानुजाचार्य ने सोचा कि अभी ये जो जीवन मेरा है ये किसकी सेवा के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए। बहुत अभी मैंने इस संसार की सेवा कर दी, हाँ तो अभी मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो रामानुजाचार्य ने अपना पाव अपना कदम घर से बाहर डाला और जाकर जो मेन टेम्पल है उस सिटी का वरदराज, उसमें प्रवेश करने से पहले एक मार्केट में गए। मार्केट में जाकर पहले कपड़े खरीदे, कौन से कपड़े खरीदे, सैफरॉन गेरवे वस्त्र खरीदे, और सीधा मंदिर के अंदर विग्रह के सामने गए वरदराज। आप जाओगे ऊंचाई पर वो मंदिर है और वहां भगवान ऐसे वर मुद्रा में है और उनके हाथ में लिखा हुआ है मां शुचर, ऐसे लिखा है भगवान के हाथ में, क्योंकि गीता में उन्होंने बोला है ना सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचर। मां शुचर मीन्स डरो मत, क्या है भगवान के द्वारा, डरो मत मेरी सेवा में, डरना क्या, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो रामानुजाचार्य ने वस्त्र खरीदे सैफरॉन, अभी गृहस्थ आश्रम में थे, सीधा कपड़े खरीदे और मंदिर के अंदर गए और भगवान के पास जाकर सीधा वस्त्र बदलकर भगवान कृष्ण से क्या कर लिया, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और बाहर निकले तो ऐसे आचार्य के रूप में, बाहर आए तो एक महान सन्यासी के रूप में, हजारों हजारों लोग उनको देख रहे थे। और फिर बाद में अभी उनको नाम कौन देगा, हाँ तो उनको नाम देने के लिए बाहर उनके एक गुरु थे, हाँ उनके कई सारे गुरु थे रामानुजाचार्य के, 7-8 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थे, दीक्षा एक से लेती, लेकिन सबसे क्या लेती, उन्होंने शिक्षा ली थी। तो एक सबसे पहले जो शिक्षा जिनसे ले थे उनका नाम था कांचीपूर्ण, एक महान वैष्णव थे वहां के, कांचीपूर्ण से उन्होंने कांचीपूर्ण को मिले दरवाजे में उस मंदिर के, और कांचीपूर्ण को कहा कि आप मुझे संन्यास नाम दीजिए। तो वहां एक सरोवर के किनारे मंदिर के सामने यज्ञ किया और वहां कांचीपूर्ण उनको नाम देते हैं यतिराज। यतिराज का मतलब क्या है, यति मतलब सन्यासी, सन्यासियों में जो राजा है वो कौन है, यतिराज, ऐसे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जब ऐसे आचार्य बने तो फिर उन्होंने अत्यधिक बहुत अधिक प्रचार करना शुरू किया, और बल्कि उनके अपने जीवन से ये दो सिद्धांत सदैव उनके जीवन से देखे जाते थे। कौन से, एक तो अनन्य भावना से भगवान की सेवा करना और दूसरा कौन सा था, वैष्णवों की सेवा करना, ये रामानुजाचार्य देखते थे। तो ऐसे रामानुजाचार्य, एक बार रामानुजाचार्य के पास एक ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण कहता है कि मुझे आपकी सेवा करनी है। वो ब्राह्मण रामानुजाचार्य को कहने लगा कि मैं तो अपनी शुद्धि चाहता हूं और इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, आप जैसे महान भक्त की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे महान भक्त की सेवा करने से मैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य कहते ठीक है, आप मेरी सेवा करना चाहते हो या मेरी सेवा से मुक्त होना चाहते हो तो आ जाओ, मेरे पास बहुत सारी सेवा है। तो वो ब्राह्मण बहुत आनंदित हो जाता है। वो ब्राह्मण का एक गुण था कि उसके हृदय में कपटता नहीं थी, वो ब्राह्मण बहुत सरल हृदय का था। इसलिए भक्तिमय जीवन में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो क्या है, कपटता है। हम कपटता हृदय में धारण करके भक्ति का अभ्यास कदापि नहीं कर सकते, और कपटता भक्ति में होकर कभी भी भक्तिमय जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए वैष्णव का मतलब है सरलता, जैसे एक छोटे से बालक में होती है। इसलिए वैष्णव कौन है, जो सरल है, सरलता ही वैष्णवता। हाँ, तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण रामानुजाचार्य को कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप हमारे आश्रम में आओ। तो कहते हैं रामानुजाचार्य उनको कि मैंने भी एक व्रत लिया है। कौन सा व्रत, कि मैं रोज, हाँ, जो सरल हृदय का ब्राह्मण है उसके चरणों को धोता हो और उसका पानी ग्रहण करता हूं, पीता हूं। तो आप आओ और इस प्रकार से मेरा सेवा करो। कौन सी सेवा, अपने चरण कमल धोके मुझे जल पिलाओ। कोई करेगा ऐसी सेवा, हाँ, कि मैं आऊंगा और आप मेरे चरण धो और आप पानी पियो। हाँ, तो रामानुजाचार्य वो ब्राह्मण सोचते, अरे मैं तो इनकी सेवा करने की सोच रहा था, इन्होंने इनकी ये क्या सेवा चाहते हैं, कि रामानुजाचार्य चाहते थे कि उस ब्राह्मण के चरण धो लो और पानी पी लो। तो ब्राह्मण जब आया तो रामानुजाचार्य रोज उस ब्राह्मण के चरण धोते थे, जलपान करते थे और अपने शिष्यों को भी पिलाते थे। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ऐसी महान सेवा का आदर्श सामने रखते हैं। और बल्कि वो ब्राह्मण भी फिक्स था अपनी सेवा में, क्योंकि भगवान तब हमारी ओर आकृष्ट होते हैं जब हम उनकी किसी ना किसी प्रकार की सेवा में क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। हनुमान क्यों इतने गुणगानित किया जाता है, हनुमान को क्यों, क्योंकि उनके जैसी सेवा इस संसार में भगवान राम की किसी ने नहीं की। और ऐसी सेवा हनुमान ने कोई बदले में कुछ मांगा नहीं। जब लंका का महायुद्ध खत्म हुआ, सब लोग अयोध्या में आए, भगवान राम ने सोचा कि सबको अभी उपहार देना है जिन्होंने जिन्होंने सेवा की है। तो बड़ा सा स्टेज बनाया गया, स्टेज पर राम सीता सब बड़े बड़े लोग थे और फिर सबको उपहार दिए जा रहे थे। किसके हाथों से दिए जा रहे थे, सीता देवी के हाथों से। जब सीता देवी के हाथों से उपहार दिए जा रहे थे तो हनुमान, हाँ, को हनुमान को जब दिया जा रहा था उपहार, तो हनुमान किसी चीज को लेने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, हनुमान कहते मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो हनुमान की इस वचनों को जब सुना तो भगवान राम गदगद हो गए। अब भगवान राम ने सोचा इसको क्या उपहार दो, जिस व्यक्ति मेरी सेवा के अलावा कुछ और नहीं मांगता। तो भगवान राम ने सोचा क्या भेंट देना चाहिए इनको। तो भगवान राम ने थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद की, सारे ब्रह्मांड में वैकुंठ जगत में घुमा ली कि क्या ढूंढ के वस्तु दे दो इसको। भगवान को कुछ देने योग्य नहीं मिला, एक ही चीज दी भगवान राम ने, क्या, गए हनुमान के पास और अपना आलिंगन किया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, मेरे पास आपको देने के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है, ये आलिंगन के अलावा, ये है अनन्य भावना से सेवा। तो उसी प्रकार से वो जो भक्त था अपनी सेवा में, वो ब्राह्मण फिक्स था, कुछ भी हो जाए, रामानुजा चाह रहे हैं कि मैं अपना चरण का जल दे दूं तो वो देने के लिए तैयार है। जैसे गोपिया, भगवान को सरदर्द था, भगवान को सरदर्द कैसे ठीक होने वाला था, चरण रस से। गोपियों ने सोचा नहीं, हमें नरक जाना पड़े जहां जाना पड़े वो तैयार है, लेकिन यदि कृष्ण को आनंद मिलेगा तो हम सेवा करेंगे। तो वैसे वो ब्राह्मण भी था। तो एक दिन रामानुजाचार्य चले गए किसी प्रोग्राम में प्रवचन देने और अपने शिष्यों के साथ बहुत लेट हो गया, मध्य रात्रि का समय हो गया उनको वापस आने के लिए। और आज उन्होंने ये सेवा नहीं की थी, उस ब्राह्मण का चरण नहीं धोया था। जब वो वापस आए तो वो सोच ही रहे थे, तो आश्रम में जब घुसे तो बाकी लोग सारे सो गए थे और ये ब्राह्मण वहां एक जगह खड़ा हुआ था और खड़े होकर इंतजार कर रहा था, किसका, रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य ने कहा आप अभी तक सोए नहीं, आपने अभी तक प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तो वो ब्राह्मण कहने लगा कैसे मैं प्रसाद ग्रहण करूं जब तक मैं अपनी सेवा पूर्ण ना करूं। तो रामानुजाचार्य आश्चर्यचकित हो गए कि इतना ये ब्राह्मण फिक्स है अपनी सेवा में। फिर रामानुजाचार्य ने उनके चरण धोए, जल पान आदि किया और फिर श्रीपद रामानुजाचार्य आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य का जो जीवन है वो बहुत अधिक वैष्णव सेवा आदि से भरा हुआ था और उन्हीं के समान उनके जो भक्त थे उनका जीवन भी क्या था, रामानुजाचार्य के समान ही ऐसी भगवत भावना से या भगवान की सेवा से सदैव भरा रहता था। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में कई सारी घटनाएं हैं। एक घटना मुझे याद आती है कि रामानुजाचार्य ही वो आचार्य जिनके कारण आज हम तिरुपति जा पाते हैं, तिरुपति बालाजी की क्या कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि जब भगवान जो बालाजी हैं, बालाजी कौन है, कृष्ण है। हाँ, तो ऐसे जब भगवान उस पहाड़ के ऊपर थे तो वहां दो प्रकार के जो दो ग्रुप्स, एक तो शिवजी के जो उपासक हैं और विष्णु के उपासक आपस में फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। शिवजी के जो उपासक कहते थे ये महादेव है, शंभु है। हाँ, और ये विष्णु के भक्त कहते थे ये कौन है, विष्णु है। तो अभी ये जो लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था और सेवा पूजा ठीक से नहीं हो रही थी तो सबने सोचा किसको बुलाएंगे हम, रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य आते हैं और जब वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो महायुद्ध हो रहा है। किसके लिए युद्ध हो रहा है, ये कहते हैं कि ये हमारे शिवजी हैं, महादेव हैं, वो कहते विष्णु हैं। हाँ, शैव और वैष्णव के बीच में। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है हम एक परीक्षा करेंगे। हाँ, भगवान ही स्वयं उत्तर देना पड़ेगा उनको खुद ही। यदि ये महादेव है तो शिवजी के जो उपासक है उनको कहा कि आप क्या करो, हाँ रात्रि में हम शाम के समय में जब पट बंद होंगे उससे पूर्व हम क्या रखेंगे, आप लोग त्रिशूल और डमरू रख दो अंदर। और रामानुजाचार्य ने स्वयं अपने हाथ से भगवान के लिए शंख और जो चक्र आदि है हाँ वो रखा और फिर उन्होंने कहा कि यदि ये शिवजी होंगे तो क्या उठाएंगे, सुबह क्या उठाएंगे, डमरू और त्रिशूल, और ये विष्णु होंगे या कृष्ण होंगे तो क्या उठाएंगे, अपने शंख चक्र गदा पर। तो अभी ये रखा गया शाम के समय में और पूरे रात दोनों ग्रुप अलग अलग अपना जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। शिवजी का ग्रुप वहां कीर्तन कर रहा था, इनका ग्रुप यहाँ कीर्तन कर रहा था और सब इंतजार कर रहे थे कौन से समय का, मंगल आरती का इंतजार कर रहे थे। और मंगल आरती का जब समय हुआ, जब दरवाजा खोला तो भगवान ने क्या उठाया था, शंख चक्र गदा पद्म। क्यों, क्योंकि भगवान श्रीपाद रामानुजाचार्य से क्या करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम रखते थे। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य विशेष आचार्य हुए हैं और जिनके शिष्य भी उनके समान क्या थे, बहुत अधिक पावरफुल थे। जब रामानुजाचार्य पहली बार श्रीरंगम में गए थे और वो दीक्षा लेना चाहते थे एक महान आचार्य यमुनाचार्य से, तो यमुनाचार्य को मिलने के लिए जब गए यहां से कांचीपुरम से गए, जब वहां पहुंचे शहर के बाहर तो देखा कि सारा शहर शोक में डूबा हुआ है। और क्या हुआ था, वो पहुंचने से कुछ घंटे पूर्व ही उनके जो गुरु यमुनाचार्य ने क्या किया था, शरीर छोड़ दिया था। और शरीर छोड़ा था और सारे लोग उनके शिष्यगण भक्तगण सब एकत्रित होके वहां खड़े थे। जब रामानुजाचार्य वहां गए, रामानुजाचार्य ने कावेरी में स्नान किया और अपने गुरु का दर्शन करने गए तो देखा कि उन्होंने शरीर छोड़ा है और जब उनके शरीर को देखा, हाँ देह को देखा, तो रामानुजाचार्य ने एक चीज देखी उस शरीर में कि उनकी जो उंगलियां हैं एक हाथ ऐसे खुला है और एक हाथ की तीन उंगलियां ऐसे ढकी हुई है, ये किसी ने नहीं देखा था। तो रामानुजाचार्य ने देखा और पहली बार वो यमुनाचार्य उनके गुरु को देख रहे थे। रामानुजाचार्य ने देखा कि अरे ये क्या है, ये ऐसा क्यों है। तो उन्होंने पूछा क्या यमुनाचार्य जीवन भर उनकी उंगली ऐसी रहती थी मुड़ी हुई। तो उनके शिष्य ने कहा नहीं, हाँ सबने कहा आज ही हम देख रहे पहली बार। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि श्री संप्रदाय के जो सबसे महान आचार्य है यमुनाचार्य, उनकी तीन इच्छाएं क्या है अभी पूर्ण होनी है भगवान की सेवा से संबंधित। तो फिर इन्होंने बोलना शुरू किया। इसलिए जो उत्तम शिष्य है उसको आज्ञा देने नहीं पड़ती गुरु को, वो गुरु की इच्छा को जानकर क्या करता है, सेवा में लगता है। और दूसरा नंबर का, दूसरे कैटेगरी का शिष्य है जिसको आज्ञा देनी पड़ती है, बोलना पड़ता है ये कर तब वो करता है। और तीसरा है बोलकर भी अवज्ञा करके तब करेगा और वो भी नहीं करेगा, हाँ ऐसे धरातल है, थर्ड क्लास डिसाइपल जिसको कहते हैं। तो रामानुजाचार्य फर्स्ट क्लास थे। रामानुजाचार्य ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि पहली चीज उन्होंने बोली, उन्होंने बोला कि मैं स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में फिक्स हो जाऊंगा और परम सत्य का ज्ञान प्रदान करूंगा और इस संसार के लोगों का जो माया का भ्रम है उससे लोगों को मुक्त करूंगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि मैं प्रचार करूंगा। ये जैसे बोला तो एक उंगली क्या होती है, खुल जाती है, सारे लोग देखते कि ये क्या हो गया। और दूसरी चीज उन्होंने बोले कि मैं एक महान ऋषि हुए हैं व्यास देव के पिता पराशर मणि, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है विष्णु पुराण। कहते कि विष्णु पुराण में विष्णु की सारे महिमा का वर्णन किया है। तो ऐसे उस पराशर मुनि के आदर सम्मान हेतु मैं एक अपने विद्वान शिष्य का नाम क्या रखूंगा, पराशर रखूंगा। तो जैसे ये बोला दूसरी चीज, हाँ वो दूसरी उंगली उनकी खुल जाती है। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि मैं ये सारे संसार में स्थापित करूंगा कि भगवान विष्णु से बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है और इसको स्थापित करने के लिए वेदांत सूत्र की टीका लिखूंगा, श्री भाष्य। जैसे ये बोला तो उनकी तीसरी उंगली भी क्या हो जाती है, ऐसे खुल जाती है। तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य थे, हाँ जिनका जो अपने गुरु की आंतरिक इच्छाओं को जानते थे। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य आज आविर्भाव हैं। तो उनकी इन दो शिक्षाओं को हमें मेडिटेट करना चाहिए, विशेष रूप से जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में स्वीकार किया था। एक शिक्षा है, क्या है एक शिक्षा, अनन्य भावना से भगवान की भक्ति करना। हाँ वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने न धनम न जनम न सुतरेम के द्वारा हमें सिखाई है। और श्रील प्रभुपाद ने भी वही चीज हमें प्रदान की है कि भगवत सेवा करनी चाहिए बिना किसी हेतु की, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं रखना। हाँ एक ही अभिलाषा कि भगवान में कैसे आपकी और अच्छे से सेवा कर सकता हूं। हाँ क्योंकि इस संसार में भगवत सेवा से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भगवान की सेवा है करने के लिए वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए देवतागण भी स्वर्ग में कहते हैं कि ये भारत के निवासी बहुत भाग्यवान है कि वो भगवत सेवा करने का मौका उनके हाथ में है। इसलिए देवतागण भी कहते कि कब ऐसा समय आएगा जब हम इस भारत भूमि में जन्म लेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, इसलिए आप देखो, क्योंकि भगवान की सेवा ऐसे नहीं कि हम किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो भगवान की सेवा करेंगे दक्षता से, नहीं। जो भी हमारे पास योग्यता है उसी को क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। उसको प्रभुपाद ने बोला है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। उपयोगिता क्या है, सिद्धांत है। जो भी गुण हमारे पास है, वो गिलहरी के पास क्या था, कोई शक्ति थी, बड़े बड़े पहाड़ नहीं उठा सकते थे। उसने देखा कि अरे सारे वानर सेना लगी हुई है, बड़े बड़े पत्थर लेके पुल बनाने का काम कर रहे। उसने सोचा, रे सारे सेवा में लगे हैं, मैं अकेले इस सेवा से वंचित हूँ राम के। तो उसको लगा, नहीं, जीवन का सफलता इसी में है, राम की सेवा करो। तो गिलरे जाती है, सोचती क्या सेवा, तो वो देखती कि अरे इन्होंने तो मिट्टी डालना रह गया है। तो ये अपना जाते थे मिट्टी के उसमें, और अपने बालों में मिट्टी ले लेती थी कैसे तो, और जाकर पत्थरों के ऊपर ऐसे डाल देती थी। अभी हनुमान ने देखा, हनुमान तो बड़े बड़े पत्थर उठा के ले जाते थे। ए चल हट, पाँव के नीचे आ जाओगी, कहा बीच बीच में आ रही हो। हाँ, मतलब दूसरों की सेवा में हमें कॉन्शियस होना चाहिए। हर एक भक्त की सेवा क्या है, कृष्ण की आंखों में बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण थोड़ी भी कोई सेवा करता है उसको बड़ा ऐसा देखते हैं। भगवान राम ने ये देखा, हनुमान गर्व हो रहा है तुम्हें अपनी सेवा से। फिर गिलहरी को देखा, अरे ये तो बहुत विनम्रता से, सरल हृदय से, निष्कपट भावना से सेवा कर रही है। उनको अपने पास बुलाया और उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि गिलहरी के बॉडी में क्या होता है, वो लाइन्स आ गई है। हाँ, परमानेंट भगवान की निशानी हो गई। कोई भी गिलहरी को देखता है राम का याद आती है, आती कि नहीं आती, कम से कम भक्तों को आनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसी सेवा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा दुख इस संसार में कोई है तो, या दुखी व्यक्ति कोई है तो वो है जिसके पास भगवान की सेवा करने के लिए नहीं है। हाँ, इसलिए किसी को दंड देना है इसकॉन में, किसी को पनिशमेंट देते हैं भक्त को, तो उसकी क्या छीन लेते, सबसे पहले सेवा छीन लेते। सेवा छीन ले से वो दुर्बल हो जाता है। हाँ, क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन किस चीज से बनता है हमारा, वो किससे बनता है, सेवा से। हाँ, ये लाइट अभी जली हुई है, यहाँ ये वायर काट दो तो कोई कनेक्शन नहीं। वैसे भगवान के बीच और हमारे बीच का संबंध कैसे है, सेवा से है। सेवा को काट दिया जाए तो फिर हमारे पास आनंद नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो सेवा भी करनी कैसे, अनन्य भावना से। भगवान बस, हे प्रभु, आप प्रभु हो और मैं आपका सेवक हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और दूसरी चीज जो हमने चर्चा की थी वो क्या थे, वैष्णव जन सेवा, भक्तों की सेवा करना। और ये नहीं ढूंढना है कि कोई बड़ा बड़ा भक्त ढूंढता हूं। हमारी समस्या क्या है, कोई बड़ा भक्त आ जाए उसकी सेवा नहीं, जो भी हमारे साथ हैं उसकी सेवा करना शुरू कर दो। हाँ, जब ऐसी सेवा करना शुरू करते भगवान देखते हैं सेवा की भावना को। हाँ, तो हमें वैष्णव, हम तो तैयारी कोई वैष्णव ही नहीं है, पूरे मंदिर में वैष्णव नजर ना आता, दूसरे मंदिर का भक्त आता है तो उसकी सेवा करते हैं हम, है ना, ऐसे रहते हैं। कोई बड़ा सन्यासी आ जाए, बड़ा कोई आ जाए भक्त जिसके पास पद आदि हो उसकी सेवा नहीं, मुझे हाँ जो मेरे साथ हैं उसकी सेवा शुरू करनी है। जब ऐसी सेवा करते हैं तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं। भगवान को सबसे अधिक आकर्षित करने का ये सर्वोत्तम उपाय है। और वैष्णव की सेवा के बिना भगवत धाम नहीं जा सकते। रामानुजाचार्य के एक महान गुरु थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, उनका लीला बताकर मैं यहाँ विराम देता हूँ। तो ये कांचीपूर्ण चेन्नई के पास एक टाउन था, वहां से चल चल के आते थे कांचीपुरम में, कई घंटे लगते थे। और वो भगवान जो थे वरदराज, भगवान का नाम वरदराज है, हाँ कृष्ण, तो उनकी सेवा करने करते थे। और वो विशेष सेवा होती थी, हाँ, श्री संप्रदाय में भगवान की एक विशेष सेवा होती है जिसको कहते हैं एकांत सेवा। हाँ, तो भगवान जब सोने के बाद वो अल्टर में जाके सेवा करते हैं, आज भी विभीषण के पास वो सेवा का दायित्व है। तो ये आते थे जब पट बंद होते थे और रात्रि में ये सेवा करते थे, ये भक्त जिनका नाम था कांचीपूर्ण, और इतने सरल हृदय के थे कि सारा शहर उनसे प्रेम करता था। तो एक दिन एक शूद्र व्यक्ति उनको मिलता है और वो कहता है कि हे कांचीपूर्ण, आप रोज भगवान के पास जाते हो, भगवान आप भगवान उनसे बात करते थे, भगवान के पास जाते हो, बात करते हो, उनको पूछो कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ये शूद्र व्यक्ति का तो वो गए, जब दोपहर को ऐसे अल्टर बंद होता है, फैन करने की सेवा होती है ना भगवान को फैनिंग, तो उनको कहा कि वो शूद्र व्यक्ति ने पूछा है कि उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा उनका उद्धार जरूर होगा, भगवान कहते हैं क्यों, क्योंकि आप जैसे महान भक्त की सेवा करते और आपसे प्रेम रखता है। अरे ये व्यक्ति तो भाग्यवान है, भगवान ने सीधा बोल दिया वो वैकुंठ जाएगा। तभी 15-20 दिन बीचे एक महीना हो गया, अभी ये कांचीपूर्ण को खुद को लगा कि अभी मैं अपने बारे में पूछता हूँ, बहुत दिनों से मंदिर आ रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा डाउट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे पंखा झाल रहे थे अकेले दोपहर को, और पूरा शक्ति लाकर आई, पूछू डर लग रहा था, पूछू कि नहीं पूछू, तो पूछा कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं। तो भगवान कहते नहीं, तुम्हारा नहीं होगा। जैसे बोला तुम्हारा नहीं होगा, उनका वो पंखा हाथ में गिर गया, वहां से चल पड़े बाहर, अल्टर से निकल निकल के चले गए वहां से कई किलोमीटर दूर, वहां से 7 घंटे लगते बस से जाने के लिए श्रीरंगम गए। वहां जाकर वहां एक भक्त थे जिनका नाम था महापूर्ण, जो रामानुजाचार्य के गुरु थे, उनके घर में गए, जिनके घर में वो पति पत्नी रहते थे और गौशाला थी, बहुत सारी गायें थी, अपना वेश भक्त का वेश सब बदल दिया, ऐसे ऐसे कपड़े डाल दिए, उनके घर में जाकर कहा मुझे कुछ काम दे दो आपके घर में सेवा। उनको लगा कोई ऐसा ही व्यक्ति है, तो लगा दिया जाओ गौशाला में, गाय संभालो, चराने ले जाना, गोबर उठाना, ये सब काम करते रहना। तो वो करने लगे, 6 महीने बीते और बीच में बारिश आ गई, तो इनके पास एक ही जोड़ा कपड़ा था, और जो वैष्णव का कपड़ा कपड़े थे वो बांध के रखे थे एक कोने में, बारिश आई तो वो जो कपड़े थे वो भीग गए थे जो गाय चराने गए थे। फिर वैष्णव ड्रेस आदि उन्होंने डाल दिया चुपके से, अकेले रहते थे। तो ये महापूर्ण जिनके घर सेवा कर रहे थे, कभी उनके बर्तन भी धोते थे, सब काम करते थे, तो वो आए कि बारिश आया, अरे वो जो काम करता है वो भीग तो नहीं गया, देखने आए तो देखा वो भीग तो गया था, क्योंकि अभी वैष्णव के ड्रेस डाल के तिलक वगैरह डाल के बैठा हुआ है कुटिया में अलग से। इन्होंने पहचान लिया, आप तो साधारण नहीं लगते हो। वो पता चला उनको कि ये तो कांचीपूर्ण है, जो कांचीपुरम में हर उनसे प्रीति रखता है, वरदराज जिनसे बात करते भगवान। तो उन्होंने कहा ये आप तो अपराध करवाया आपने, हमारी सेवा कर दी घर में आकर इतने महीने, कहा कि आप वापस जाइए वरदराज के पास। ये जाते फिर भगवान के पास, फिर अपना चामर वो उठाते और ऐसे फैन करते हैं, और वो भगवान कहते जब फैन उठाया ना भगवान, अभी तुम जाओगे भगवत धाम, क्योंकि अभी क्या करके आए हो, वैष्णव की सेवा करके आए हो। तो इस प्रकार से ऐसे हजारों घटनाएं हैं, हाँ, जहाँ से हम सीख सकते हैं कि भक्तों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए। तो ये दो चीज़ें याद रखें हम, बाकी चीज़ें याद रहे ना रहे, लेकिन रामानुजाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षा ले, जो श्रील प्रभुपाद ने भी अपने इस आंदोलन में निहित कर दिए हैं, अनन्य भजन और दूसरा भक्त जन सेवा। हाँ, तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य का जीवन बहुत विस्तार से है, कई घंटे चर्चा की जा सकती है। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, आविर्भाव और तिरोभाव दिवस पर वो वैष्णव बहुत अधिक दयालु होते हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए उनके चरणों में। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महा महोत्सव के श्रील प्रभुपाद के हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हाँ वो भी है, रामानुजाचार्य का शरीर अभी भी है, हजार साल हो गए हैं उनको प्रकट होकर 900 साल। ये साल श्रीरंगा में बहुत बड़ा उत्सव है, 50 साल हो गए हैं श्री संप्रदाय में, रामानुजाचार्य को 1000 साल हो गए हैं। तो आज भी आप श्रीरंगम जाते हो तो रामानुजाचार्य ने अपना शरीर छोड़ा था, एक अपने शिष्य के गोद में अपने चरण रख के, एक शिष्य के गोद में अपना सर रख के, और अपने जो आध्यात्मिक गुरु के जो पादुकाएं हैं खड़ाव उनको देखते हुए रामानुजाचार्य ने शरीर छोड़ा था। तो उनका शरीर जब समाधि करवाया तो वो समाधि से बाहर आ गए, और आज भी उनका शरीर है, 1000 साल हो गए हाँ, और ऐसे बैठे हुए हैं। हम तो कई बार गए हैं और उसके ऊपर कई सारे उस समय से हजार मतलब इतने सालों से कई प्रकार के लेप लगाते हैं, और 3 साल या 4 साल में या हर साल में एक बार वो निकालते हैं लेप, नए लेप डालते हैं। तो ऐसी उनकी आंखें हैं और बिल्कुल ऐसे देखते हैं आपकी ओर, ऐसे बिल्कुल आंखें ऐसे क्लीन है, और उनकी वैसे कहते हैं कि बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं। तो आज भी रामानुजाचार्य का वो शरीर, आज तो बहुत हजारों लोग वहां होंगे उनका दर्शन करने के लिए, उनका अलग से बड़ा सा टेम्पल है रामानुजाचार्य का श्रीरंगम में। तो ऐसे विशेष आचार्य है, श्रील प्रभुपाद भी गए थे, चैतन्य महाप्रभु वहा, चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा 3 जगहों में रुके हैं। एक तो नवद्वीप में रहे 24 साल और लगभग 18 साल वहां रहे जगन्नाथपुरी में, और फिर 4 महीने उसके बाद कहां झुके नहीं महाप्रभु ज्यादा, 4 महीने श्रीरंगम में रहे रामानुजाचार्य के स्थान में। हाँ महाप्रभु डेली जाते थे रंगनाथ का, रामानुजाचार्य का दर्शन करने का ऐसी विशेषता है श्रीपद रामानुजाचार्य। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा।